नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। आज की खबरों के साथ कल हुए भारत बनाम पाकिस्तान की रोमांचक मैच का भी जिक्र करेंगे और जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया है उस पर कुछ लाइन तो बनती है। तो कहते हैं ना कि हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, पर भारत की जीत का पुराना किस्सा है। जब जब टकराएगा पड़ोसी देश हमसे, हारना ही है उनके नसीब में। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान को हराकर सुपर 8 में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मैच जारी। अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने अपने अपने मुकाबले जीते। एम सुरेश कुमार दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स मेन ड्रॉ में पहुंचे। क्वालिफाइंग दौर में उलटफेर करने वाले दक्षिण कोरिया के पार्क ओइसुंग को सीधे सेट से शिकस्त दी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 सत्र के कार्यक्रम की घोषणा की और उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और पहला विंटर कार्निवल आज संपन्न हुआ। सबसे पहले शुरुआत भारत बनाम पाकिस्तान के रोमांचक मैच से। आईसीसी T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के बाद सुपर 8 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। पूरे मैच का हाल जानते हैं संक्षेप में, उसके बाद करेंगे चर्चा।
India comprehensive winners by 61 runs. Pakistan have been bowled out for 114.
श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कल T20 वर्ल्ड कप के 27वें मुकाबले में भारत ने अपनी जीत की लय बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 40 गेंद में 77 रन की पारी खेलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। सैम अयूब ने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 176 रन के लक्ष्य के जवाब में उत्तरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज साहिब सदा फरहान को 0 पर आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को मजबूत बढ़त दिला दी। पाकिस्तान की टीम ने 5 ओवर में 34 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से साथ न मिलने की वजह से दबाव बरकरार रहा और पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। ईशान किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले जीत लिए हैं। यह किसी एक टीम के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड है। भारत का अगला मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो इन खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन जी। राजा रमन जी, आपका स्वागत है।
थैंक यू सो मच।
तो जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने कल दिखलाया और पाकिस्तान ने जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी पर काफी हद तक भरोसा किया, लेकिन हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने स्पिनर्स के चक्रव्यूह को तोड़ दिया।
सबसे पहले तो ईशान किशन की जितनी तारीफ की जाए कम, उन्होंने निडर होते हुए अपने शानदार पारी खेली है और जो शुरुआत दी है वो भारत को उसका एडवांटेज भारत को मिला। हालांकि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए और नहीं लग रहा था कि वो कंट्रोल में है, लेकिन ईशान किशन की बारी और फिर आखिर में शिवम दुबे ने जो रन बनाए वो बड़े महत्वपूर्ण साबित हुए। लेकिन जिस तरीके से हमारे गेंदबाज, चाहे तेज गेंदबाज हो या फिरकी गेंदबाज हो, वो हावी हुए पाकिस्तान पर, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक हवा बना है। इंडिया जब सामने आती है, उनके भारत की टीम जब सामने आती है, पाकिस्तान डगमगा जाती है और यही हुआ है कल देखने को एक बार फिर।
बिल्कुल, और कल ही हमने इस मंच पर ही बैठ करके ये बात भी कह रहे थे कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो कहीं ना कहीं एक दबाव का भी टेस्ट होता है, और हमने कहा ही था कि अब देखना है कि किस पर ये प्रेशर ज्यादा होता है, किस पर प्रेशर का असर ज्यादा दिखता है। तो पाकिस्तान काफी दबाव में दिखी, और हालांकि इस बीच जो पहला विकेट हमने खोया था कल अभिषेक शर्मा का, स्वास्थ्य कारणों से पिछला मैच वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन उम्मीद थी कि कल वो अच्छा मैच खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखलाएंगे। अब अगला मुकाबला जो इंडिया का है नीदरलैंड से 18 फरवरी को, तो उसमें क्या उम्मीद की जा सकती है अभिषेक शर्मा से?
जिस तरीके से भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है, सिर्फ एक खिलाड़ी पे नजर ना रखते हुए भारतीय टीम पे अगर हम नजर रखते हैं तो शानदार क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, और मुझे लगता है कि टूर्नामेंट फेवरेट्स में भारतीय टीम जरूर शामिल होगी, और नेदरलैंड्स के सामने शायद उतना संघर्ष नहीं करना होगा जितना शायद अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भारत को करना पड़ा। लेकिन शानदार क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, और मुझे लगता है कि लीग से सारे मैचेस जीतते हुए आगे बढ़ेगी भारतीय टीम।
बिल्कुल, तो अब इंतजार है अगले मैच का 18 फरवरी को, लेकिन इस बीच जो है भारतीय प्रशंसकों का उत्साह जारी है, तो देखते हैं कि कल के मैच के बाद कैसा उत्साह देखने को मिला।
Pakistani team performed was very pathetic. They were outplayed, outshone. There was nothing in the field. No batting, no bowling, no fielding at all.
तो सुना आपने किस तरह से रोमांच रहा भारतीय प्रशंसकों के पास, और हर तरफ भारतीय खिलाड़ियों की और भारत की जय जयकार देखने को मिली। और T20 विश्व कप में आज पल्ले कल्ले में श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 19 ओवर में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आज ही खेले गए कोलकाता में एक मुकाबले में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है। इंग्लैंड के 203 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी इटली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 178 रन पर ही सिमट गई। वहीं दिल्ली में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 5 विकेट से हराया। तो इंग्लैंड की टीम सुपर 8 में जगह बना चुकी है। अफगानिस्तान की टीम के लिए आज करो या मरो का मुकाबला था, तो इसे हम कह सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात पर बड़ी जीत हासिल की अफगानिस्तान ने।
बिल्कुल की है, लेकिन अब अफगानिस्तान डिपेंड करेगी और दूसरी टीम पर, कोई एक उन पे मेहरबान हो तब वो नॉकआउट पे पहुंचेंगे। एक मैच उनको, बहुत शानदार टीम है बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है अफगानिस्तान, लेकिन क्वालिफाई करने में थोड़ी सी और मेहनत जरूर करनी पड़ेगी अफगानिस्तान।
बिल्कुल, और इस बीच ऑस्ट्रेलिया अपने अंतिम ओवर खेल रहा है और 7 विकेट पर 180 रन बना चुका है। और आज का मैच अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को हराना बहुत जरूरी है अगर उसे सुपर 8 की उम्मीदें बरकरार रखनी है। तो
अभी तक जो हाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में, लगता है कि वो बहुत ही धैर्य के साथ खेल रहे हैं। हालांकि श्रीलंका के गेंदबाज आखिर के कुछ ओवर में वापसी की है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर अग्रसर हो रहा है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद ये मैच जीत जाएगा।
बिल्कुल, अब बात दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां आखिरी क्षण में जगह बनाने वाले 26 वर्षीय एम सुरेश कुमार पुरुष सिंगल्स के मेन ड्रॉ में पहुंच गए हैं। क्वालिफाइंग के दूसरे और अंतिम दौर में सुरेश ने दक्षिण कोरिया के पार्क उइसुंग को 6-3 7-5 से शिकस्त दी। तो राजा रमन जी, पहली बात तो यह है कि टूर्नामेंट के पहले दौर में जिस तरह से कल सुरेश कुमार ने अपना शानदार प्रदर्शन किया और इटली के 5वीं वरीयता प्राप्त लोरेंजो कार्बोनी को हराया, वहीं दक्षिण कोरियाई पार्क ने कल भारत के शशि कुमार मुकुंद को 6-4 6-2 से हराकर ड्रॉ में बड़ा उलटफेर किया था। और संयोग देखिए कि उन्होंने दूसरी दौर में जगह बनाई बड़ा उलटफेर करके, और आज पार्क को भारतीय खिलाड़ी सुरेश से ही पराजय मिली है।
ये बहुत ही दिलचस्प खेल का एक भाग है, किसी दिन आप हावी होते हैं आपसे बेटर प्लेयर में, और दूसरे ही दिन आप किसी कमजोर तो नहीं कहूंगा जो लोअर रैंक प्लेयर है उनके साथ आपको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खिलाड़ी भूखा है, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। खेल की खूबसूरती यही है कि आपको हर रोज वापस आना होगा मैदान में और फिर अपना 100% एफर्ट देना होगा। और सुरेश की जितनी तारीफ की जाए कम, एंट्री बहुत देर से हुई है मेन ड्रॉ में, लेकिन वहां पर आना और फिर बड़ी जीत हासिल करना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जी बिल्कुल, और इसी बीच एक बुरी खबर यह भी है कि वाइल्ड कार्ड से क्वालिफाइंग में उतरे रामकुमार रामनाथन को दक्षिण कोरिया के सुंगहियोन से हार का सामना करना पड़ा। रामनाथन ने पहले दौर में चीनी ताइपे के हुआंग सुंग हाओ को सीधे सेट से पराजित किया था। वहीं मेन ड्रॉ वाइल्ड कार्ड से उतरे करण सिंह को भी प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के डेनियल मिखाल्स्की से हार का सामना करना पड़ा। तो अब आज जो भी खिलाड़ी मेन ड्रॉ में पहुंचे हैं कल उनका मुकाबला होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इंडियन फुटबॉल लीग IFL 2025-26 सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लीग की शुरुआत 27 फरवरी से होगी। यह सत्र पहले 21 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन अब इसे 6 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले दिन 2 मुकाबले होंगे। पहले मैच में नामधारी FC का मुकाबला आइजोल FC से होगा। दूसरा मैच चन्मारी FC और गोकुलम केरला FC के बीच होगा। क्लबों के प्रस्ताव के अनुसार FIL 2025-26 सत्र 2 चरणों में खेला जाएगा और पहले चरण में 10 क्लब राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलेंगे। दूसरे चरण में टीमों को 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण में शीर्ष 5 टीमें चैंपियनशिप राउंड में पहुंचेंगी, जबकि नीचे की 5 टीमें केंद्रीकृत रेलिगेशन राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो पहले जो आई लीग के नाम से जाने जाने वाली अब इंडियन फुटबॉल लीग, जो कि भारत की पुरुष पेशेवर फुटबॉल की दूसरी श्रेणी लीग है, तो इसका उद्देश्य कह सकते हैं कि इसकी पहचान को मजबूत करना या फिर फुटबॉल में इंडियन टीम को कितनी मजबूती देती है, कितना आत्मविश्वास दे रही है।
इस साल जो लीग हो रहा है, ये इंडियन फुटबॉल लीग की बात जब हम कर रहे हैं, ये हम वी आर ओनली टिकिंग अ बॉक्स। मुझे लगता है कि इतनी देर से शुरू हुआ है लीग, होने जा रहा है लीग, और फिर उसके बाद मैचेस भी कम दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो ये वी आर ओनली डूइंग अ टिक बॉक्स। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय फुटबॉल को बहुत आगे जाना है, विश्व में कुछ कर दिखाना है, फुटबॉल संघ को और ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो बहुत प्रयास करना होगा हमारे फुटबॉल के स्तर को उठाने के लिए। और ये आई लीग, ये जो फुटबॉल लीग जो शुरू होने जा रहा है, ये दिस इज अ वेरी बेयर मिनिमम एफर्ट, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
बिल्कुल, लेकिन जो FIA के जो क्लबों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सीजन की शुरुआत देर से करने का निर्णय लिया गया, तो क्या इसके सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के, इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, और कहा जा रहा है कि इसकी जो समग्र गुणवत्ता में सुधार होगी?
अगर ये लीग नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ भारतीय संघ पर सख्त कार्रवाई करती, तो ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए एक बॉक्स टिक हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे आप विदेशी प्लेयर नहीं देखेंगे, क्योंकि कई सारे प्लेयर विदेश में जाके वहां पे खेलना शुरू कर दिया है। टीम्स के सामने बहुत मुश्किल का समय था, लेकिन ये टूर्नामेंट हो रहा, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर ये सीजन अच्छा निकल जाता है, जो भी सीजन बचा है वो अच्छा निकल जाता है भारतीय फुटबॉल के लिए, हम सौभाग्य अपने आप को मानना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, तो अगर कुल मिलाकर कहें तो अभी भी भारतीय फुटबॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और विंटर कार्निवल 2026 की, जिसका आज भव्य समापन हुआ। देश भर से आए खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेना की टीम 3 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि जम्मू कश्मीर ने 2 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश की एथलीट ने अपने राज्य के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की।
हिमाचल ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, 18 मेडल्स, तो हम मेडल्स की झोली भर के हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, भले ही बर्फ कम थी, तो उस चीज से हम एथलीट्स काफी इम्प्रेस्ड हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था।
तो कहते हैं कि अब खेल के साथ साथ स्वास्थ्य का भी, खिलाड़ियों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, तो इस बीच खेलों में डोपिंग से जुड़ी नई चुनौतियों पर विचार करने के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित 4th राष्ट्रीय अनुपालन मंच की बैठक में खराब सप्लीमेंट, दवाओं के दुरुपयोग और प्रतिबंधित पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। खेल सचिव हरिरंजन राव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिस पर कई तरह के उपायों पर विचार किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो राजा रमन जी, आपने इन खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।
और जाते जाते बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन का लक्ष्य दिया है। नमस्कार।